वाल्मीकि रामायण से कुछ पाठ कर रहे हैं और ये विशेष रूप से विभीषण के चरित्र पर, विभीषण कैसे राम के पक्ष में रावण को समझाते हैं और दूसरे राक्षसों को समझाते हैं, तो ये सब बातें आज हम पढ़ के सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। अब आप सुनिए, रावण की सभा लगी हुई है और अभी तक हनुमान जी लंका को जला करके और सीता से बातचीत करके चले गए और लंका में अब बहुत बड़ा दहशत छाया हुआ है कि एक बंदर आकर के पूरी लंका को जला गया है और सीता के कारण बहुत बड़ा अब लंका के ऊपर संकट आ गया है। इस पर सभा बुलाई गई है रावण की और कई राक्षस हैं जो बड़े अभिमानी हैं, घमंडी हैं। वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को तैयार देख करके विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ करके रावण से कहा। तो आप समझ रहे हैं, विभीषण ने उन राक्षसों को रोका और रावण से हाथ जोड़ करके कहते हैं, तान गृहीतायुधान सर्वान् वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम् पुनः प्रत्युपवेश्यतां। अब देखिए विभीषण हाथ जोड़ करके रावण से क्या समझाते हैं। तात जो तीन उपायों से ना प्राप्त हो सके, जो मनोरथ तीन उपायों से ना प्राप्त हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। रामचंद्र जी बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। अप्रमत्तम कसम तम तुम विजिगेशुम बलेसितम जितरो तम दुराधर्षम तम दर्शय तुम इच्छत है। विभीषण, विभीषण क्या कह रहे हैं? निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहां तक आ पहुंचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है? शत्रुओं के पास असंख्य सेना है, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। समुद्रम लंघयित्वा तुम घोरम नद नदीपतिम गतिम हनुमतो लोके को विद्या तर्कयेतवान् बलान्य परिमेयानि वीर्याणि च निशाचराम् परेताम् सहसावज्ञा न कर्तव्या कथञ्चन। तो विभीषण ने ये समझाया रावण को कि राम की शक्ति पर विचार करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अपनी शक्ति तो देख रहे हो लेकिन ये नहीं देख रहे कि शत्रु के पास कितनी शक्ति है। ठीक से विचार करो। अब आगे विभीषण ये समझा रहे हैं कि राम का कोई दोष भी नहीं है। तुम राम से युद्ध करना चाहते हो तो राम का दोष भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षसराज रावण का कौन सा अपराध किया था? इस पर विचार करो। जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जन्म स्थान से हर लाए। विभीषण कह रहे हैं कहां पर, विभीषण ये बात कह रहे हैं कहां पर, रावण की सभा में, रावण के सामने ही। क्या कह रहे हैं कि रावण का क्या अपराध किया था राम ने, हा? जो कि राम रावण ने राम की पत्नी का हरण किया, तो दोष बता रहे हैं रावण के। किमच राक्षसराजस्य रामेणापि कृतं पुरा आजहारे जनस्थानात् यस्य भार्यां यशस्विनः। अब अगर ये कहो कि नहीं राम ने खर को मारा, रावण ने सीता का हरण क्यों किया, अगर उसका तर्क कोई दे कि भाई राम ने अपराध किया था, क्या अपराध किया था, खर को मारा, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। देखा राक्षसों के बीच में ही एक राक्षस जो है राक्षसों के विरुद्ध बोल रहा है और क्या कह रहा है कि खर अत्याचारी था, पूरी लंका में और कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है विभीषण के अलावा। विभीषण बोल रहा है कि खर अत्याचारी था, उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। राम ने खर को मार डाला, इसमें राम का क्या दोष, क्योंकि खर अत्याचारी था, उसने स्वयं ही राम को मार डालने के लिए राम के ऊपर आक्रमण किया था, इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो राम का कोई दोष नहीं है, राम का दोष क्यों मानते हो कि खर को मारा, खर कितना अच्छा था, क्या खर अच्छा था, खर भी दुष्ट था। खरोयम यदि मृतस्तु रामेण हतो रणे अवश्यम प्राणिनाम प्राणा रक्षितव्या यथा बलम। यदि इसी कारण से सीता को हरकर रावण लाए हैं तो उन्हें जल्दी ही सीता लौटा देनी चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल लड़ाई है उसे करने से क्या फायदा है। ये तन्निमित्तं वैदेही भयं नास्तु महान् भवेत् आहतां आहृता सा परित्याज्यां कलहार्थे कृतं कृतेनु किम्। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ बैर करना उचित नहीं है, मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। आप देख रहे पूरी लंका में एक व्यक्ति है जो ये बात बोल रहा है, करोड़ों 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 राक्षस है, ये कोई नहीं इस बात पर विचार करता, एक राक्षस विचार कर रहा है। न तुच्छम वीर्य बता तेन धर्मानुवर्तिना वैरम निरर्थकम कर तुम दीताम अस्य मैथिली। जब तक श्री राम के बाणों द्वारा लंका विध्वंस नहीं हो जाए तब तक क्या करो, सीता को लौटा दो। राम के द्वारा ये हाथी घोड़े और रत्नों से भरी लंका पूरी विध्वंस ना हो जाए उसके पहले क्या करो, सीता को लौटा दो। यावन सकजाम सा स्वाम बहुरत्न समकुलाम कुरिंदारे ते बाणे दीताम अस्ते मैथिली। जब तक अत्यंत भयंकर और विशाल बानर हमारी लंका को नष्ट नहीं कर देते हैं तब तक क्या करो, सीता को वापस कर दो। अगर लंका की कुशल चाहते हो, यावत् घोड़ा माती दुर्धरता हरिवाहिनी नावत् कन्दतिनो लंकां तावत् सीता प्रदीयताम्। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो ये लंका पूरी नष्ट हो जाएगी और समस्त पूर्वी राक्षस मार डाले जाएंगे। विनश्येन हि पुरी लंका सूरा सर्वे च राक्षसा रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। अब विभीषण क्या कह रहे हैं रावण से, आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूं। आप मेरी बात मान लें, मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूं। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दो। देखा विभीषण ने कितने बार कहा एक ही बात को, क्या कि सीता वापस कर दो, सीता वापस कर दो, हैं? इतनी ही भलाई है, हैं? अगर बहुत बड़े संघर्ष छोड़ना चाहते हो तो सीता वापस कर दो। प्रसाद है तो हम बंधुत्वा पुरुषा वचनम मम हितम तथ्यम तो हम धोमी देता मैथिली।
राजकुमार श्री राम, जब तक आपके वध के लिए तेजस्वी सुदृढ़ और अमुख बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उनकी सेवा में सीता को सौंप दें।
पुरा शरत सूर्य मरीचि सन्निभान नवाग्र पुंखान सुदृढ़ान पात्मजान सृजत्य मोघान शिखान बधाये ते प्रदीयताम दासरथाय मैथिली। भैया आप क्रोध को त्याग दो, क्योंकि वो सुख और धर्म का नाश करने वाला है। तुम्हारा जो क्रोध है ये तुम्हारे सुख और धर्म का नाश कर देगा। धर्म का सेवन करो, क्योंकि धर्म से सुख और यश बढ़ता है। हमारे ऊपर प्रसन्न हो, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं और हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो हमें जिंदा रखने के लिए क्या करो, सीता को राम, राम को सीता वापस कर दो। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। तेजासु कोपम सुख धर्म नाशनम वजस्व धर्मम प्रति कीर्ति वर्धनम प्रसिद जीवे में सपुत्र बांधवान प्रदीयताम दासरथाय मैथिली। विभीषण की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। तो रावण ने कुछ बोला नहीं, रावण ने विभीषण की बात का विरोध नहीं किया और विदा कर दिया सबको। क्या क्या करके कि ठीक है विचार करेंगे। रावण ने मतलब इस प्रकार से सभा को विदा कर दिया कि ठीक है विचार करेंगे। अभी सभा के बीच में कोई एकदम विरोध नहीं करना चाह रहा था। विभीषण मचां रावणो राक्षसेश्वर विसर्जयित्वां सर्वान् प्रविवेश सुखं गृहं। अब दूसरे दिन सवेरा होते ही विभीषण ने रावण के घर में प्रवेश किया। देखो सभा में समझाया सबके सामने, अब अकेले भी रावण के घर में आकर के विभीषण समझा रहे हैं। विभीषण की एक ही चिंता है, सब राक्षसों की सुरक्षा हो है? और सीता को वापस कर दिया जाए। हाँ तो वहां पर रावण जो है सिंहासन पर विराजमान था, तो विभीषण ने रावण को प्रणाम किया। सपूज्यमानो रक्षो वीर दीप्यमानं सुतेजसाम आसनस्थं महाबाहुर वंदे धनदानुजं। अब विभीषण क्या कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे प्रकार से समझाया है? क्या क्या कह रहे हैं विभीषण, जब से सीता आई है तब से बहुत ही बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यदा प्रभृति वैदे संप्राप्ते हैं परम तप तदा प्रवृत्ति दृश्यन्ते निमित्तान्य शुभानिनः। अब क्या बुरे लक्षण क्या हैं, जब से सीता लंका में आई हैं तो बहुत बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या है, पहली बात है मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक आग जलाने पर भी आग प्रज्वलित नहीं होती है। एक तो ये है, बुरा लक्षण क्या है, आग प्रज्वलित नहीं होती है जबकि मंत्रों द्वारा विधिवत अगर जलाई जाती है तो चिंगारियां निकलती हैं आग से और लपड़ के साथ धुआं निकलता है। मंथन काल में अग्नि प्रकट होती है तो धुएं से मलिन रहती है, आग अच्छी तरह से जलती नहीं है। एक तो ये बुरा लक्षण है। सत्फुलिंगा सधू मार्ची सधू में कल सोदय मंत्र संदुक्षितोप्यग्निर्तम्यंग अभिवर्धते। अच्छा, आप और दूसरा बुरा लक्षण क्या है, रसोई घर में और अग्निशाला में और वेदाध्ययन के स्थानों में ताप निकलते हैं, है? एक बुरा लक्षण ये है। कहा, एक तो रसोई घर में सांप निकलते हैं, दूसरा अग्निशाला में सांप निकलते हैं और वेदाध्ययन के स्थान में भी सांप निकलते हैं हमेशा, है? हवन सामग्रियों में चीटियां देखी जाती हैं, चीटियां चीटियां तो सब दूषित है हवन सामग्री भी। अग्निश्वेशु अग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलेषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु चापपीलिका। अच्छा, अब और क्या बुरा लक्षण है, गायों का दूध सूख गया है। गायों जो है जो बहुत दूध देती थी उनके थन सूख गए हैं, दूध नहीं निकलता, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं, मद बहाते थे लेकिन अब मद बहाना बंद हो गया है हाथियों का। और घोड़े अच्छा घास दिया जाता है तो भी वो खाते नहीं है और शिकायत करते हैं, हिनहिनाते हैं घोड़े, अच्छा भोजन अच्छी घास भी नहीं खा रहे हैं और हिनहिनाते हैं, ये बुरा लक्षण है। गवाम पयांसी इसकन्नानी विमदा वर कुंजरा दीन मत्वा प्रहे संते नवग्रासा भी नंदिना। और बुरा लक्षण क्या है, गधों ऊंटों और खच्चरों के रोंगड़े रोंगटे खड़े रहते हैं, किनके, गधे ऊंट और खच्चरों के रोंगटे खड़े रहते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं, विधि पूर्वक चिकित्सा कराने पर भी वो स्वस्थ होते ही नहीं है। खरोष्ट्रोतरा राजन भिन्न रो मात्र वंचिता न स्वभावे तिष्ठन विधान रपी चिंतिता। और क्रूर कौवे, क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काव काव करने लगते हैं और मकानों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और काव काव करते हैं कौवे, ये बहुत बुरा लक्षण है। कब से हो रहा है ये, जब से सीता जी आई है लंका में। वायता संगता क्रूरा व्याहरंती समंततः समवेता सा दृश्यन्ते विमानांग्रेषु संगतः। अच्छा, और क्या बुरा लक्षण है, लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध मंडराते रहते हैं, दोनों संध्या के समय प्यारिन नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द कर दिया है। गृद्धाश्चा परिलीयन्ते पुरीम उपरी पिंडिता उपपन्ना संधे द्वे व्याहरं के शिवं शिवां। और बुरा लक्षण क्या है, नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह हैं एकत्र हुए मांसभक्षी पशु लोग जोर जोर से चीत्कार करते हैं, मांस खाने वाले जो पशु हैं जोर जोर से गर्जना करते हैं सभी फाटकों पर। क्रव्यादानां मृगाणां च पुरी द्वारे तु संगतः श्रूयन्ते विपुला घोषां सविस्फूर्जित निस्वनां। वीर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा लगता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। सदैव प्रस्तुते कार्य प्रायश्चित मिदं समं रोचये वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम। अब देखो विभीषण कितना समझा रहे हैं, और ये कहाँ पर हैं विभीषण? अभी रावण के घर में समझा रहे हैं। महाराज यदि ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष नहीं देखना चाहिए। इदम च यदि मोहान लोभाद्वा व्याहृतम मया तत्रापि च महाराज न दोषम कर्तुम अर्हति। सीता का अपहरण और उससे होने वाला अपशकुन ये सारी जनता जानती है, जितने राक्षस है राक्षसियां हैं ये सब जानते हैं। अब वो बोले या ना बोले अभिमान के कारण वो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जानते सब हैं कि जब से सीता आई है तब से मृत्यु के लक्षण जो है ना सब राक्षसों के मृत्यु के लक्षण जो है ना दिखाई दे रहे हैं। कुछ राक्षस हैं वो डर के कारण ही बोलते हैं और कुछ राक्षस हैं घमंड के कारण बोलते नहीं हैं, लेकिन देखते सब हैं और जानते सब हैं कि मौत सामने आ गई है। ये बात आपके कानों तक पहुंचाने में सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वो मुझे आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर अच्छी प्रकार विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करेंगे। प्रापणे चास्य मंत्रस्य निवृत्ता सर्व मंत्रिणा अवश्यम चा मया वाच्यम यदृष्टम अथवा श्रुतम संप्रधार्य यथा न्यायम तं भवान कर्तुम अर्हति। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में खड़े अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। इति समंत्रणां मध्ये भ्राता भ्रातारं मोचिवान् रावणं रक्षसाम श्रेष्ठं पत्यमे तन् विभीषणान्। विभीषण की ये हितकारी और कोमल बात सुन करके रावण को बुखार चढ़ाया। देखा उसको बुखार चढ़ाया। विभीषण ने बड़ी कोमलता से ये बातें कही थी। क्यों उसको बुखार क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसकी आसक्ति है राम के साथ बैर बढ़ाने में। किसी की आसक्ति शराब पीने में हो जाती है ना तो एक दुर्व्यसन हो जाता है व्यसन। तो उसका जो व्यसन है वो क्या है? राम के साथ बैर बढ़ाने का उसको व्यसन हो गया है। जैसे कोई जुआरी होता है लाखों करोड़ों रुपए हार जाता है जुआ खेलना बंद नहीं करता, ऐसे राम के साथ उसका बैर बढ़ाने का एक व्यसन ऐसा बन गया है कि उसको जो ना विभीषण की बात बहुत बुरी लगी। हाँ इसलिए उसने उत्तर दिया, विभीषण मैं तो कोई भय नहीं देखता, राम सीता को कभी नहीं पा सकते। क्या कहता है? राम सीता को कभी नहीं पा सकते, देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में टिक नहीं पाएंगे। हितम महार्थम मृदु हेतु संगितम नितीत काला यदि संप्रतीक्षम निशम्य तन्वाक्यम उपस्थित है जो रहा प्रसंगवान उत्तर में तदब्रवी भयम न पश्यामि कुतस्य दत्यहम राघवा प्राप्ति जातु मैथिली सुरेशेन्द्र संगरे कथम ममाग्रता शासते लक्ष्मणाग्रजहा। ऐसा कहकर के महाबली रावण ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया कि ठीक है जाओ। विभीषण से कुछ बुरा तो नहीं बोला लेकिन जल्दी विदा कर दिया कि बस अब सुनना नहीं चाहता ना बात। उसको बुखार चढ़ाया, कान पक गए विभीषण की बातें सुन सुन करके। इत्येव मुक्त्वा सुर सैन्य नाशनु महाबला संयति चन्न विक्रम दशानन भ्रातरमाप्यवादिनम विसर्जयामास तदा विभीषणम। अब रावण जो है सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था, इसलिए उसके हितैषी विभीषण जैसे जो राक्षस थे उसका अनादर करने लगे थे, उसके पाप कर्म की निंदा करते थे। इन कारणों से रावण बहुत ही चिंतायुक्त हो गया था। रावण की चिंता बहुत बढ़ गई। सबभूव कृतो राजा मैथिली काम मोहिता असन्माना चतुरता पापहा पापे ने कर्मणा। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था, इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही अपना कर्तव्य माना। अतीव काम संपन्नो वैदेही मनु चिंतयन अतीव समय काले तस्मिन वैयुधि रावण अमात्यम प्रात कालम अमन्यत। अब रावण सभा भवन में जाता है और रावण की आज्ञा से जितने राक्षस हैं वो सब वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और फिर वही चर्चा चलती है कि क्या करना चाहिए। उस समय कुंभकर्ण ने जो है ना बहुत घमंड की बातें करी कि मैं सबका विनाश कर दूंगा और सीता हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। तो आगे राक्षस राज रावण के इन वचनों को और कुंभकर्ण की गर्जना को सुनकर विभीषण ने रावण से फिर ये हितकारी वचन कहे। निशाचर इंद्रस्य निशम्य वाक्यम सकुंभकर्णस्य तदर्जितानि विभीषणो राक्षस राज मुख्यम वाच वाक्यम हितम अर्थ युक्तम। अब विभीषण क्या कहते हैं, राजन सीता नाम का एक विशाल सर्प है जो आपके गले में बांधा गया है। सीता नाम का एक बहुत बड़ा सर्प है जो आपके गले में बंधा हुआ है। उसकी पांच पांच जो अंगुलियां हैं इस सर्प के पांच सिर हैं, सीता रूपी सर्प के। जब तक पर्वत के समान ऊंचे बानर लंका पर चढ़ाई नहीं करते तभी तक आप श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। यावन लंका हम समी द्रवंती बली मुका पर्वत कूट मात्रा दसरायुधा च विनखायुधा च प्रदीयताम दास रथाय मैथिली। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली और वज्र तुल्य बाण राक्षसों के सिर नहीं काटते हैं तभी तक आप श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दो। यावन गृहणन्ति शिरांसि बाणा रामे हृता राक्षस पुंगमाना वज्रोपमा वायु समान वेगान प्रदीयताम दास रथाय मैथिली। विभीषण बहुत समझाया। आप क्या कह रहे हैं, राजन ये कुंभकर्ण इंद्रजित महापार्थ महोदर निकुंभ कुंभ और अतिकाय कोई भी युद्ध में राम के सामने ठहर नहीं सकते हैं। न कुंभकर्ण इंद्रजित राजन तथा महापार्थ महोदरो वाम निकुंभ कुंभ तथाधिकायाम इसा तुम समर्था युधि राघवस्। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करे, इंद्र या यमराज आपको गोद में छिपा ले या आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बचोगे। विभीषण बिल्कुल सीधी बात बता रहे हैं, कुछ भी इसमें टेढ़ा पर नहीं है, बिल्कुल सीधी बात बता रहे हैं। जीवन तो राम से न मोक्षते तुम गुप्ता तमित्राप कितना मरोगी न वासवश्याम के गतो न मृत्यो न भो न पाताल मनु प्रदिष्ट। अब प्रहस्त को घमंड था तो विभीषण की बात सुनकर के प्रहस्त क्या बोलता है। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं और दानवों से कभी नहीं डरते, भय क्या चीज है, हम तो जानते ही नहीं। प्रहस्त कहता है, भय नाम की तो कोई चीज हम जानते ही नहीं, निसमय वाक्यम तो विभीषण से तथा प्रहस्तो विचलन भाते ननो भयम विद्म न दैवतेभ्यम न दानवेभ्योपितवा कदाचित। हमें युद्ध में यक्षों गंधर्वों बड़े बड़े नागों पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर युद्ध में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? कौन कह रहा है? प्रहस्त कह रहा है। न यक्ष गंधर्व महो रगेभ्यो भयम न संघे पतगो रगेभ्यम कथम नु रामा भविता भयम नो नरेन्द्र पुत्रा समरे कदाचिन। अब विभीषण रावण के सच्चे हितैषी थे, उनकी बुद्धि का धर्म और काम में ऐसा प्रवेश था, उन्होंने प्रहस्त के अहंकारी वचन सुनकर ये बात कही। प्रहस्त वाक्यम तो हितम निसम्य विभीषणो राजहितानुकांक्षी ततो महार्थम वचनम बभाते। महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वो सब तुम्हारे किए हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह है जैसे पापी पुरुष स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। पापी व्यक्ति बोलता है बहुत कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन वो जाता कहाँ है? नरक में जाता है। रहस्य राजा च महोदरस्य तम कुंभकर्ण चेतार्थ जातम ब्रवीत रामम प्रति तन्न सत्यम यथागते स्वर्गम धर्म बुद्धे। आगे विभीषण क्या कह रहे हैं? प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है? वधस्तु रामस्य मया त्वयाचम प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैर्मा कथम भवेदर्थे विशारदस्य महार्णवम तर्तुमिवाप्लवस्य। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं, उनका प्रादुर्भाव इच्छा को कुल में हुआ है, वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराट कबंध और बाली जैसे वीरों को बात की बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी ठेकड़ी भूल जाएंगे। धर्म है प्रधानस्य महारथस्य इच्छा कुवंश प्रभुवस्य राज्ञा पुरोष देवास्य तथा विदस्य कृत्य सुशक्तस्य भवन्ति मूढ़ा। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। तीक्ष्णान ताम तव कंग पत्रां दुरासदा राघव विक्रमुक्तां विद्वा शरीरम प्रविशन्ति बाणां प्रहस्त तेनैव विकत्स्यते त्वम्। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी सेखी बघाड़ते हो। विद्वान ताम प्रविशन दिकायम प्राणान दिका ते समी तुल्य वेगा सीता सरा राघव विप्रमुक्ता प्रहस तेन कथसे। रावण, महाबली, तिसरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और मेघनाद भी सम्रांगण में इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। न रावण हो नाति बल त्रिशीर्णो न कुंभकर्ण से सुतो निकुंभ न चिंद जिंदा सरथिम प्रबोढ़ त्वं वा रणे सक्र समं समर्थां। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ और पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में राम के सामने ठहर नहीं सकते हैं। देवांतको वापि नरांतको वा स तथापि कायोति रसो महात्मा अकंपनश्चाद्रि समान सारा स्थातुं न सकता यदि राजवत्सल। ये महाराज रावण तो व्यसन के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं, इसके सिवा ये स्वभाव से कठोर है और राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुओं की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अयम च राजा व्यसनादि भूतो मित्रैर मित्रै प्रतिमैर भवन्ति अनवासते राक्षस नाशनाते तीक्ष्णा प्रकृत्या समीक्षकारी। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं, आप सब लोग इसके हितैषी हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से पकड़े हुए पुरुष को उसके हितैषी उसके प्रति बलात् करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर आवश्यकता हो। हाँ, तो विभीषण क्या कह रहे हैं कि जैसे भूत किसी को लग जाए तो उसके जो आत्मीय जन हैं, उसके संबंधी हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? अगर आवश्यकता पड़े तो उसके बाल पकड़ करके भी उसको पीटते हैं। उसी प्रकार से आप इस रावण की रक्षा करिए। उसी प्रकार ये रावण को भूत लगा हुआ है तो विभीषण कह रहे हैं कि इसके बाल पकड़ करके भी इसकी चाहे पिटाई करो, इसको गलत रास्ते पर मत चलने दो। आप सब लोग मिलकर के ही रावण के सामने विभीषण कह रहे हैं यावधि केत ग्रहणात् सुरेंद्री समेत सर्वे परिपूर्ण काम निगृह राजा परिरक्षित भूधैर यथा भी में बलैर गृहीता। तो विभीषण समझा रहे हैं उत्तम चरित्र से परिपूर्ण रघुनाथ जी के सामने ये रावण जो है अपना विनाश करना चाहता है, तो आप सब लोग मिलकर के इसका उद्धार करो, रावण को बचाओ, अपना विनाश ना करे। सुवारिणा राघव सागरिण प्रक्षाद्यमान सरसा भवंदी युक्त स्वयं तारय तुम समय चैन काकुस्थ पाताल मुखे पतन सहां। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। इदम पुरस्यास्य सराक्षसस्य राज्यस्य पत्यम ससुरेन्द्रस्य सम्यक् वाक्यम सुमतम ब्रवीम नरेन्द्र पुत्राय ददातु मैथिली। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु के बल पराक्रम को समझकर और दोनों पक्षों की स्थिति और हानि का विचार करके अपने स्वामी के लिए जो हित कर हो वही बात कहे। परस्य वीर्यम सबलम च बुद्ध्या स्थानम चयम चैव तथैव वृद्धिम तथा स्वपक्षेप्यनुमृश्य बुद्ध्या वदे क्षमम स्वामी हितम समंत्री। अब विभीषण की बात सुनकर के इंद्रजीत क्या कहता है। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे, उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर महाकाय इंद्रजीत ने ये बात कही। इंद्रजीत बहुत कष्ट से सुन पाया, उसको बड़ा कष्ट हो रहा था क्योंकि वो बड़ा घमंडी है। बृहस्पति तुल्यमतेर्वचस्तम निसंयत्न विभीषण तथो महात्मा वचनम बभासे तत्रेन्द्र जिन्न ऋत जूथ है मुख्या। अब इंद्रजीत क्या कहता है, मेरे छोटे चाचा आप बहुत डरे हुए हैं और आप निरर्थक बातें कह रहे हो, आपकी बात का कोई अर्थ नहीं है, आप बहुत डरे हुए हो। जिसने इस कुल में जन्म लिया है वो ऐसी बात नहीं कहेगा जैसे आप कहते हो। राक्षसों के कुल में जो जन्म लेता है वो ऐसी बात नहीं बोलता कभी भी, यदि आप बात बोल रहे किम नाम तेता कनिष्ठ वाक्यम अनंतकम मैं बहुभीत वच्चम अस्मिन् कुले योपि भवेन् न जाता सोपि दृशम मैं व्यवधेन न कुर्याम। अब इंद्रजीत अपने पिता रावण से क्या कह रहे हैं, रावण से कहता है पिताजी हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल वीर पराक्रम से रहे हैं, इनके अंदर बल वीर पराक्रम बिल्कुल नहीं है, पूरे राक्षस कुल में एक विभीषण हमारे छोटे चाचा में ये चीज है। सत्वेन वीरेण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण कतेजसाचम एका कुलेस्मिन् पुरुषो विमुक्तो विभीषण सात कनिष्ठे सहम। विदो मनुष्य राजकुमार क्या है, उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है, देखा है? कितने बेवकूफ हैं, कहता है हमारा छोटा सा राक्षस भी मार सकता है, फिर मेरे डरपोक चाचा आप हमें क्यों डरा रहे हो, ऐसा कह रहे हैं। किम नाम तो मानुष राज पुत्रा वस्मा के मैं के नहीं राक्षस न सुप्राकृत ना भी निहन तुम्हें तो सख्यो को तो भी सहते इसमें वीरो मैंने तीनों लोगों के स्वामी इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया, उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर सब दिशाओं की शरण ली थी। त्रिलोकनाथो ननु देवराज सक्रो मया भूमि तले निविष्टा भया पिता चापी दिशा प्रपन्ना सर्वे तदा देव गण समग्राम। मैंने हट पूर्वक एरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय मैं जोर जोर से चिघाड़ रहा था, अपने पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। एरावतो निस्वन मुन्नदंता निपातितो भूमि तले मया तो विकृष दंतो तुम मया प्रसय विद्राथिता देव गण समंग्राम। जो देवताओं के भी दर्प का गलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला है, और जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। तो हम सुराणामपि दर्प हंता दैत्योत्तमानामपि शोक करता कथम नरेन्द्रात्म जयोर न सकतो मनुष्य जो प्राकृत यो सुवीर यहां। इंद्र के समान तेजस्वी महापराक्रमी इंद्रजीत की ये बात सुनकर विभीषण ने ये वचन कहे। अब विभीषण ने क्या कहा, अथेन्द्र कल्पस्य दुरासदस्य महोदसं वचनम निशम ततो महार्थम वचनम भाते विभीषणा शस्त्रभृताम वरिष्ठाम। अब विभीषण ने क्या कहा सुनिए, किससे कह रहे हैं विभीषण? हाँ, मेघनाथ से कह रहे हैं। तात अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए तुम भी अपने विनाश के लिए बहुत सी बेकार की बातें बकते हो। न तात मंत्र तव निश्चयोस्ति मानस तुमद्याप्य विपक्व बुद्धि तस्मात्याप्यात्म विनाशनाय वचोर्थहीनं बहु विप्रलब्धम्। इंद्रजीत तुम रावण के पुत्र कहकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम अपने पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो, यही कारण है कि तुम राम के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उसकी हां में हां मिला रहे हो। पुत्र प्रवादे न तू रावणस्य तुम इंद्रजन मित्र मुखोति शत्रु यस्य दृशम राघव तो विनाशम जिसम में मोहात अनुमन्य से तुम। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो, हा? तुमको मार डालना चाहिए, और जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वो भी वध के योग्य है, जिसने आज तुम जैसे दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है वह प्राण दंड का ही अपराधी है। तमेव वध्यस्य सुदूर मध्यस्यां सचाप विवध्य हो या इहानय स्वाहा बालंद्रलम साहसिकम तयोद्यम प्रावेश यन्मंत्र कृताम समीपम। इंद्रजित तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है, तुम अत्यंत दुर्बुद्धि दुरात्मा और मूर्ख हो, इसीलिए बालकों की इसी बेसिर पैर की बातें करते हो। मूढ़ो प्रगल्भ हो विनय हो प्रपन्न तीक्ष्ण स्वभाव मतिर दुरात्मा मूर्ख तुम अत्यंत दुर्मतिश्चान तुम इंद्रजित बाल तया ब्रवीसी। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन बाणों को कौन सह सकता है? को ब्रह्मदंड प्रथमे प्रकाशान अर्चिस्मता काल निकास रूपान सहित बाणान यम दंड कल्पान समक्ष मुक्तान राघवेण। अतः राजन हम लोग धन रत्न सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। अगर इस नगर में रहना है शोक रहित होकर के तो क्या करो, धन रत्न वस्त्र आभूषण ये सब लेकर के और सीता को राम के अर्पित कर दें। धनानी रत्नानी सुभूषणानी मातां दिव्यानी मणि से चित्रां सीतां च रामाय निवेद देवी पते में राजन भीत शोकां। तो राम विभीषण ने कितना समझाया और बड़े साहस के साथ रावण को समझाया, कठोर वचनों से भी रावण को, कोमल वचनों से भी रावण को समझाते हैं। लेकिन रावण के सिर पर क्या है, काल मंडरा रहा है, उसकी मौत सवार है रावण के सिर पर, इसलिए उसको जो है अच्छा नहीं लगा। विभीषण ने जो बात कही रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण अब विभीषण से रावण बड़ी कठोर वाणी में बोला, सुनिविष्टम हितम वाक्यम उक्तवंतम विभीषणम अब्रवीत पर संवाक्यम रावण काल है चोदित। भाई शत्रु और कुपित तर्प के साथ रहना पड़े तो रह लिया जाए, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि ना रहे। तो रावण का क्या इशारा है विभीषण से कि तुम शत्रु से और सर्प से भी ज्यादा खतरनाक हो। शत्रु जो गुस्से में है उससे उतना नुकसान नहीं होता है और सर्प से भी उतना नुकसान नहीं होता है जितना मित्र कहलाकर के जो शत्रु हो। वसेत तहां सपत्नेन क्रुद्धेनासि विषेण न तु मित्र प्रमादेन सम्मते शत्रु से विना। राक्षस संपूर्ण लोकों में अपने बंधुओं का जो स्वभाव होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने जाति वालों की आपत्ति में ही हर्ष मानते हैं, अपनी जाति के लोग जो है अपनी जाति में ही आपत्ति में आपत्ति आ जाए तो वो बड़े खुश होते हैं अपनी जाति में। जान आम सीलम जाति नाम सर्वलोके सुराक्षस हृष्यम दिव्य सन श्वेते ज्ञाति नाम ज्ञाते सदाम। जो बड़ा होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया है, मतलब मैं बड़ा हूँ तो राज्य पाकर के मैं सब में प्रधान हो गया हूँ और राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हूँ और विद्वान हूँ, धर्मशील हूँ, सूरवीर हूँ, लेकिन तो भी मुझे मेरे ही कुटुंबी अपमानित करते हैं और अवसर पाकर नीचे दिखाने की चेष्टा करते हैं। रावण उल्टा सोच रहा है विभीषण। रावण क्या सोचता है कि मैं तो धर्मशील हूँ, सूरवीर हूँ, विद्वान हूँ और बड़ा हूँ तो राज्य को भोग रहा हूँ, लेकिन जो कुटुंबी हैं वो अवसर पाते हैं तो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब विभीषण मुझको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानम साधकम वैद्यम धर्मशीलम जनाक्षस यातयो प्यपमन्यन्ते सूरम परिभवन्ति चाम। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। जाति वाले बड़े आत्ताई होते हैं, मौका पड़ने पर आग लगा देते हैं, जहर दे देते हैं, शस्त्र चला देते हैं, धन हड़प लेते हैं और क्षेत्र या स्त्री का अपहरण भी कर लेते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं जाति वाले, तो शत्रु से भी ज्यादा बुरे हैं। रावण का कहना है कि जो विभीषण है ये शत्रु से भी ज्यादा बुरा है। नित्यम अन्योन्य संग्रिष्टा विस्नेह स्वादता प्रच्छन्न हृदय घोड़ा ज्ञात शोभया वहां। अच्छा, अब रावण क्या कहता है विभीषण से, देखो कितने बुरे शब्द बोले। क्या कहा? कुल कलंक निशाचर। क्या कह रहा है? कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बात से कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। योन्यस्त्वेवं विधम रूया वाक्यम एतम निशाचर अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत् त्वां दुधे कुले पांसन। अब विभीषण को अब तो जो है बहुत ही गुस्सा आया, विभीषण को बहुत गुस्सा आया। विभीषण न्याय की बात कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तो हाथ में गदा लेकर और अन्य चार राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। गुस्से में हाथ में गदा लिया और चार राक्षसों के साथ उछले आकाश में खड़े हो गए तुरंत। इत्युक्तः परुषम वाक्यम न्यायवादी विभीषण उस पपाते गदा पाणि चतुर्भिः राक्षसैः। उस समय आकाश में खड़े तेजस्वी विभीषण ने कुपित होकर राक्षसराज रावण से कहा, बहुत गुस्से में कहा विभीषण ने, अब्रवीच्चा तदा वाक्यम जात क्रोधो विभीषण अंतरिक्षे गता श्रीमान भ्राता वै राक्षसाधिपम। राजन तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। अब गुस्से से बोले विभीषण, क्या बोले? तुम्हारा दिमाग खराब है। रावण को कहा, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो, यौ तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदर नहीं हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु बड़े भाई होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को मैं कदापि सह नहीं सकता। तुम बड़े भाई हो रहे हैं तो भी तुम्हारे इस बात को मैं सहन नहीं करूंगा। तुम भ्रांतो सिमे राजन तो तुम भ्रांतो सिमे राजन ब्रूहि माम यज्ञ दिच्छसी जिसो मान्य पितृ समूह अच धर्म पथे सीताहां इदम ही परुषम वाक्यम अचमाप्य ग्रजस्ते। रावण जो काल के वशीभूत हो जाता है तो वे सुंदर नीतियों के वचनों को भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुम मौत के बस में हो, ऐसे कहा विभीषण कि तुम्हारी मौत सामने आ गई है, इसलिए तुम सही बात को ग्रहण नहीं कर रहे हो। सुनीतम नित कामेन वाक्य मुक्तम दसानन ग्रहणम के कृतात्मान कालस्य वसेमागतः। राजन सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय हो किंतु परिणाम महत्कारी हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रिय वादिनः अप्रियस्य च प्रत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। राजाओं को सदा मीठी मीठी बातें सुनाने वाले लोग तो सदा मिलते रहते हैं, परंतु यहाँ पर विभीषण रावण से कह रहे हैं कि जो अप्रिय हो तथा हितकारी हो ऐसी बात कहने वाले बहुत कम ही मिलते हैं जो राजा का हित चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे राजा भी बहुत कम ही होते हैं जो अप्रिय तथा हितकारी बात को सुने। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा।
तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पास में बन चुके हो, तो विभीषण क्या करें कि तुम मौत से बंधे हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति तुम नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझाई थी। तुमको बचाना चाहता था, तुम्हारा भला करना चाहता था, इसलिए तुम्हें बताया था मैंने। बद्धम कालस्य पाशेन सर्वभूता प्रहारिणाम नमस्यम नमस्यम तम उपेक्षे ताम प्रदेतम शरणम यथा। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। दीप पावक शंका से शितय कांचन भूषण स्वाम इच्छाम्य हम दृष्टुम रामेणतम सरे। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े सूरवीर बलवान भी बालू की भांति नष्ट हो जाते हैं। बालू का जैसे पुल होता है नष्ट हो जाता है। सूराश्च बलवंतश्च कृताश्च नरारणे कालाभिपन्ना सीदन्ति यथा बालुकस्य तवः। राक्षस राज मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहा है वो यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी और राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। अच्छा कहा ना, ठीक कहा। तन्मर्दयतु यच्चोक्तं गुरुत्वात्तं स्वाद्धितमिच्छता आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं चेमां सराक्षसां स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि सुखी भवो मया विना। निशाचर राज मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार गलत रास्ते पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकारी बात भी नहीं मानते हैं। निवारे मानस्य मया हितैषी नरोचते ते वचन निशाचर परांत काले ही गतायु सो नाम हितम गृहनंद सुरीतम। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे, इन्हें समुद्र पार कर लिया। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आजगामे मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः।
इस प्रकार हम देखते हैं कि विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को अपने उन संबंधियों का भी त्याग कर देना चाहिए जो भौतिक दृष्टि में बड़े आत्मीय हों या घनिष्ठ हों। धन्यवाद। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।